بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سمانیہ شروتا زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ پریہ شروتا مترو، کارکرم کا شبھ آرمبھ پوتر قرآن کے سورہ لقمان کی 16ویں، 17ویں اور 18ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کیا جا رہا ہے۔ قاری ہیں شری مصطفیٰ اسماعیل۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني إنها فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ لقمان نے کہا، ہے میرے بیٹے، یدی وہ کرم رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی چٹان کے بھیتر ہو یا آکاشوں یا دھرتی میں، ایشور اسے پرلے میں سامنے لے آئے گا۔ نسندے ایشور سوکشم درشی اور جانکار ہے۔ ہے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور بھلائی کا آدیش دو اور برائی سے روکو، اور جو بھی مصیبت تم پر پڑے اس پر دھیرے کرو، نشچے ہی یہ بڑے ساہس کا کام ہے۔ اور لوگوں کے سامنے گھمنڈ سے اپنا منہ ٹیڑھا نہ کرو، اور نہ دھرتی پر اکڑ کر چلو، निसंदेह ईश्वर किसी अकड़ने वाले और इतराने वाले को पसंद नहीं करता।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारे प्रसारण को आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। दोस्तों, हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है pasttoday.com/hi। दोस्तों, आज रविवार है, 3 माह की 5 जून की 26 और ज़िलक़ादा की 26 तारीख। हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके उपरांत कार्यक्रम अनमोल बातें प्रस्तुत किया जाएगा। अनमोल बातें के बाद आप सुनेंगे राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम। उसके उपरांत हम आपको सुनाएंगे कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार, जो कि आत्मा को शांति प्रदान करता है। और सभा के अंत में हम आपको अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम सुनाएंगे। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा, और अभी आप कुछ क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनेंगे। अब आप रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति रईसी का कहना है कि प्रतिबंधों को हटाने की वार्ता वाली मेज को तेहरान नहीं छोड़ेगा। इराक में अमेरिका और संयुक्त अरब इमारात के हितों पर हमले। गुजरात हिंसा में नरेंद्र मोदी की भूमिका की जांच की मांग करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता गिरफ्तार। महाराष्ट्र में हालात खराब, बागी विधायकों को वाई प्लस सुरक्षा। और अब आप मरियम मेहरदादी और अख्तर अब्बास से विस्तार से समाचार सुनिए।
राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी का कहना है कि प्रतिबंधों को हटाने से संबंधित वार्ता को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ेंगे। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रभारी शनिवार को तेहरान की यात्रा पर थे। तेहरान में उन्होंने विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से भेंटवार्ता की। उन्होंने कहा कि तेहरान यात्रा का मेरा उद्देश्य वार्ता के मार्ग में आने वाले गतिरोध को दूर करना है। इस बीच राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने शनिवार की रात अपने टेलीविजन संबोधन में यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रभारी की तेहरान यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि ईरान वार्ता को रोकने का इरादा नहीं रखता, किंतु वो अपनी नीति से भी पीछे नहीं हटेगा। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी नीति प्रतिबंधों को हटवाना है। राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी के अनुसार इन अत्याचारपूर्ण प्रतिबंधों को बहुत जल्द हट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामने वाले पक्ष को वार्ता की मेज पर आना चाहिए। उनका कहना था कि वार्ता के साथ ही साथ प्रतिबंधों को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने वार्ता के दौरान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की ओर से ईरान के विरुद्ध प्रस्ताव को अनुचित बताते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA इस बात की 15 बार पुष्टि कर चुकी है कि ईरान की परमाणु गतिविधियों में बिल्कुल भी दिशा भेद नहीं पाया गया है।
अफगानिस्तान में आने वाले भीषण भूकंप के बाद सहायता कार्यवाहियों का क्रम यथावत जारी है, और सहायता कार्यों में अफगान जनता का हाथ बटाने के लिए ईरान की सहायता टीमें अफगानिस्तान पहुंच चुकी हैं। अफगानिस्तान के भूकंप ग्रस्त क्षेत्रों से हमारे संवाददाता की रिपोर्टों के अनुसार 18 लोगों पर आधारित ईरानी युवाओं के पहले ग्रुप ने भूकंप ग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचकर सहायता कार्रवाइयां शुरू कर दी। इस्लामी गणतंत्र ईरान के स्वयंसेवी बलों की संस्था के नवनिर्माण विभाग बसीज साजंदगी के प्रमुख मोहम्मद जहराई ने कहा कि हम अफगानिस्तान में सहायता कार्यों के लिए 110 सहायता ग्रुप भेजने के लिए तैयार हैं। ईरान, कतर और पाकिस्तान की गिनती उन देशों में होती है जिन्होंने सबसे पहले अफगानिस्तान के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए सहायता सामग्री भेजी है। ज्ञात रहे कि अफगानिस्तान में मंगलवार की रात आने वाले भीषण भूकंप से अब तक 1,500 लोग हताहत और 2,000 घायल हुए हैं। तालिबान ने दुनिया के सारे देशों और संयुक्त राष्ट्र संघ से सहायता की अपील की है।
उत्तरी इराक में संयुक्त अरब इमारात की गैस कंपनी पर एक दिन में तीसरा रॉकेट हमला हुआ है। इराकी समाचार एजेंसी ने सूचना दी है कि उत्तरी इराक में इमाराती कंपनी दाना गैस को तीसरी बार रॉकेट से निशाना बनाया गया है। फॉर्स न्यूज एजेंसी के अनुसार इराकी समाचार सूत्रों ने शनिवार की शाम देश के उत्तर में संयुक्त अरब इमारात की एक कंपनी पर रॉकेट हमले की सूचना दी। सुमरिया न्यूज ने सूचना दी है कि तीसरी बार उत्तरी इराक के सुलेमानिया में कोरमोर गैस फील्ड को रॉकेट से निशाना बनाया गया। साबरीन न्यूज टेलीग्राम चैनल ने बताया कि रॉकेट हमला चमलचाल में इमाराती कंपनी डाना गैस के प्रतिष्ठान पर किया गया तीसरा हमला है।
इराक में अमरीकी आतंकवादी सैनिकों के कारवां पर हमला हुआ है। शफक न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार इराक के बसरा प्रांत में आतंकवादी अमरीकी सैनिकों के कारवां को निशाना बनाया गया और उसके रास्ते में एक भीषण धमाका हुआ। धमाके की जिम्मेदारी अभी तक किसी गुट या व्यक्ति ने नहीं ली है, किंतु इस प्रकार के हमले प्रतिरोधकर्ता गुट अमरीकी हितों को निशाना बनाकर करते रहते हैं। रिपोर्ट मिलने तक इस धमाके में संभावित जानी और माली नुकसान का ब्यौरा सामने नहीं आया है। हालिया कुछ महीनों के दौरान अमेरिका के सैन्य कार्रवाओं पर इस प्रकार के हमले होते रहते हैं और अमेरिकी आतंकवादियों का शिकार इराक में लगभग दिनचर्या बन गया है।
अवैध अधिकृत फिलिस्तीन के शहर हैफा का इंडस्ट्रियल प्लांट बड़े पैमाने पर आगजनी का शिकार हो गया। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार आगजनी की घटना इसराइल के हैफा के बायहुदा रोड पर स्थित उन इमारतों में पेश आई जिनमें खतरनाक पदार्थ रखे हुए थे। आग की लपटें बढ़ने के साथ ही कई धमाकों की आवाजें भी सुनी गईं। फायर ब्रिगेड दल अंतिम सूचना मिलने तक आग पर नियंत्रण पाने में सफल नहीं हो सका था। अभी तक इसमें होने वाली जानी और माली नुकसान के बारे में कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है।
गुजरात अंगों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की जांच की मांग करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सितलवाड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2002 में गुजरात की मुस्लिम विरोधी हिंसा में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जकिया जाफरी की याचिका खारिज किए जाने के एक दिन से भी कम समय में राज्य के आतंकवाद निरोधी दस्ते ATS ने याचिकाकर्ताओं में से एक कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ को गिरफ्तार कर लिया है। सितलवाड़ के NGO ने जकिया जाफरी की कानूनी लड़ाई के दौरान उनका समर्थन किया था। जाफरी के पति एहसान जाफरी दंगों के दौरान अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी में हुए नरसंहार में मार दिए गए थे। गुजरात हिंसा में 1,200 से अधिक लोग मारे गए जिनमें से अधिकांश मुसलमान थे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में मिली जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जीत बताते हुए कहा कि जनता ने 2024 के लिए स्पष्ट संदेश दे दिया है, अब आम चुनाव में सभी 80 सीटें जीतेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जीत भाजपा की नीतियों और PM मोदी के लिए लोगों के विश्वास का परिणाम है। दोनों सीटों पर रिजल्ट घोषित होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला।
भारत के महाराष्ट्र राज्य में जारी राजनीतिक संकट गहराता ही जा रहा है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में जारी राजनीतिक संकट गहराता ही जा रहा है और दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर हमला करने और दूसरे पर विश्वासघात का आरोप लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में हुए विधान परिषद चुनाव के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में आई अस्थिरता थमने का नाम नहीं ले रही है। शिवसेना के विधायकों की बगावत के बाद पार्टी में दो गुट बन चुके हैं। कुछ विधायक शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को अपना नेता मान रहे हैं, जबकि कुछ पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पार्टी का नेता और मुखिया मान रहे हैं। उधर हालात को खराब होता देखकर केंद्र सरकार ने शिवसेना के 15 बागी विधायकों को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है, जिसमें सशस्त्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सुरक्षा कवच प्रदान करती है।
अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आखिरकार पिछले कुछ दशकों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जा रहे बंदूक हिंसा रोधी विधेयक पर हस्ताक्षर करने में कामयाब रहे। इस विधेयक को डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों राजनीतिक दलों का समर्थन मिला। टेक्सास में एक प्राथमिक विद्यालय में एक बंदूकधारी द्वारा 19 छात्रों और 2 शिक्षकों की हत्या किए जाने के बाद देश में हथियार खरीदने संबंधी एक कड़े कानून के लिए सरकार पर दबाव था।
अमरीकी रक्षा मंत्रालय ने इस देश के परमाणु मिसाइलों के नवीनीकरण के लिए $12 अरब का एक समझौता किया है। स्पुतनिक समाचार एजेंसी के अनुसार इस समझौते के अंतर्गत ब्रिटेन की BAE सिस्टम्स कंपनी अमेरिका के ICBM कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को सुदृढ़ बनाएगी। इसी के साथ एक ब्रिटिश कंपनी सिस्टम के संचालन से संबंधित पेशेवराना सेवाएं भी प्रदान करेगी।
समाचारिक सूत्रों के अनुसार यूक्रेन के लुहांस्क प्रांत के सेवेरोडोनेस्ट गांव नगर रूसी सेना के नियंत्रण में आ गया है। कई महीनों से लगातार झड़पों के बाद रूसी सेना को ये सफलता हासिल हुई है।
रूस की ओर से यूरोप के लिए गैस की सप्लाई रोकने के कारण यूरोप में ऊर्जा का संकट सिर उठाने लगा है। जर्मनी के ऊर्जा मंत्री रॉबर्ट हैवेक ने कहा है कि अगर देश में प्राकृतिक गैस की कमी बनी रहती है तो हम देश के उद्योगों को बंद करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि यह बात जर्मनी के उद्योग के लिए एक बहुत ही बड़ी त्रासदी होगी।
कोरिया प्रायद्वीप में अमरीका की बढ़ती वर्चस्ववादी गतिविधियों के कारण उत्तरी कोरिया ने वॉशिंगटन की कड़ी निंदा की है। उत्तरी कोरिया ने एक बयान जारी करके क्षेत्र में अमरीका और दक्षिणी कोरिया की संयुक्त सैन्य कार्रवाइयों की भर्त्सना की है। बयान में कहा गया है कि दोनों कोरिया के युद्ध की 72वीं बरसी के अवसर पर कोरिया प्रायद्वीप में बढ़ती हुई सैन्य गतिविधियों का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है।
अनमोल बातें
दोस्तों, कार्यक्रम अनमोल बातें लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज हम सुप्रीम लीडर की नज़र में इमाम खुमैनी के अंतर्राष्ट्रीय आइडियोलॉजी के विषय पर चर्चा करेंगे। अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के एक ईश्वरवादी नज़रिए की ओर इशारा करते हैं और उनके विचार और चिंतन मनन के तरीक़े को मजबूत और बड़ा सूक्ष्म करार देते हैं। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि इमाम खुमैनी के विचार पूरी तरह से एक सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक विशेषता के मत से संपन्न हैं। सबसे पहले उनकी ऑडियोलॉजी एक अंतर्राष्ट्रीय ऑडियोलॉजी थी। इस ऑडियोलॉजी का अर्थ था एकेश्वरवाद। उनकी सारी गतिविधियां, उनकी सारी तर्कसंगत बातें एकेश्वरवाद पर आधारित थीं, जो सारे इस्लामी विचारों का आधार होती हैं। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई कहते हैं कि इस नज़रिए की एक अन्य विशेषता यह है कि इसको एक वैचारिक मत के रूप में सही अर्थ में पेश किया जाए। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि इमाम खुमैनी का नज़रिया अपडेटेड था। समाज के सामने पेश आने वाली समस्याओं और ईरानी समाज के सामने मौजूद मुद्दों को पेश करते थे और संबोधक इस बात का एहसास भी करते थे। اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا کہتے ہیں کہ امام خمینی کا ویچارک مت سب سے پہلے ظلم و اتیاچار کا ورودھ اور سامراجواد کا ورودھ تھا۔ یہ وہی چیز ہے جس کا احساس ایرانی راشٹر نے کیا، دوسرے مسلم راشٹروں نے بھی، بلکہ غیر مسلم راشٹروں نے بھی اس کا آبھاس کیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نمنترن پھیلتا ہی گیا۔ اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کہتے ہیں کہ اس ویچارک مت کی ایک انیہ وشیشتا یہ ہے کہ یہ جیوت، مضبوط، گتیشیل اور ویوہارک تھا۔ کچھ بدھ جیویوں اور ٹیکہ کاروں کے نظریے کی طرح نہیں تھا، جسے چرچا کے دوران بہت ہی سندر اور اچھے شبدوں میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن کام کے سمے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کہتے ہیں کہ امام خمینی کا ترک، امام خمینی کا وچار، امام خمینی کا راستہ ویوہارک تھا، کاریہ کشیتر میں ویوہارک ہونے یوگیہ تھا۔ یہی کارن ہے کہ وہ کامیاب بھی ہوا اور وکست بھی ہوا۔ اس آندولن نے ہمارے دیش کے اتہاس کو بدل کر رکھ دیا۔ دوستوں، کاریکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
श्रोताओं, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। नौ वर्षों के अंतराल के बाद कतर के नरेश आधिकारिक यात्रा पर मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे हैं। शेख तमीम बिन हमद अल सानी का काहिरा में मिस्री राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी ने स्वागत किया। सन 2011 से मिस्र और कतर के संबंध में तनाव आरम्भ हो गया था। اس کا مکھی کارن یہ تھا کہ مصر میں جنوری 2011 سے اس دیش کے تتکالین راشٹرپتی حسنی مبارک کے ورودھ پردرشنوں کا کرم آرمبھ ہو چکا تھا۔ ترکی اور گریس کے سمبندھوں میں ایک بار پھر تناؤ چرم پر ہے اور ناٹو کے سدس دیشوں کے بیچ آروپ پرتیاروپ کا سلسلہ آرمبھ ہو گیا ہے۔ گریس کے رکشا منترالے نے ترکی پر اپنے دیش کی وایو سیما کے الگھن کا آروپ لگایا ہے۔ ان کا آروپ ہے کہ کیول شکروار کو ترکی کے F-16 یودھک ویمانوں اور ایک ڈرون ویمان نے 29 بار ان کے دیش کی وایو سیما کا الگھن کیا۔ جموں کشمیر کے پورو مکھیہ منتری ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے لوگوں سے ایک جٹ ہو جانے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ ایک جٹ ہوئے بنا ہم ان ادھیکاروں کو پراپت نہیں کر سکتے جو ہم سے چھین لیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نئی دلی کی نیتی یہ ہے کہ ہم الگ الگ ٹولیوں میں بڑھ جائیں، پرنتو ہمیں اس کے شڑیتروں کو وفل بنانا ہے۔
اللہ تعالیٰ
نو ورشوں کے انترال کے بعد قطر کے نریش آدھیکارک یاترا پر مصر کی راجدھانی قاہرہ پہنچے ہیں۔ شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا قاہرہ میں مصری راشٹرپتی عبدالفتاح السیسی نے سواگت کیا۔ سن 2011 سے مصر اور قطر کے سمبندھ میں تناؤ آرمبھ ہو گیا تھا۔ اس کا مکھیہ کارن یہ تھا کہ مصر میں جنوری 2011 سے اس دیش کے تتکالین راشٹرپتی حسنی مبارک کے ورودھ پردرشنوں کا کرم آرمبھ ہو چکا تھا۔ سمیکھا پیش کریں ساتھ ہی قائم رضوی۔
نو ورشوں کے انترال کے بعد قطر کے نریش آدھیکارک یاترا پر مصر کی راجدھانی قاہرہ پہنچے ہیں۔ شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا قاہرہ میں مصری راشٹرپتی عبدالفتاح السیسی نے سواگت کیا۔ سن 2011 سے مصر اور قطر کے سمبندھوں میں تناؤ آرمبھ ہو گیا تھا۔ اس کا مکھیہ کارن یہ تھا کہ مصر میں جنوری 2011 سے اس دیش کے تتکالین راشٹرپتی حسنی مبارک کے ورودھ پردرشنوں کا کرم آرمبھ ہو چکا تھا۔ قطر کے الجزیرہ ٹی وی چینل نے ان ورودھ پردرشنوں کا ویاپک کوریج کیا۔ بعد میں مصر کے مسلم برادرہڈ نے ان پردرشنوں کا نیتتو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس سمے قطر کی سرکار نے اس کا کھل کر سمرتھن کیا تھا۔ یہی مدعا مصر کی سینا اور قطر کے بیچ سمبندھوں میں تناؤ کا کارن بنا۔ بعد میں جب سعودی عرب اور قطر کے سمبندھوں میں تناؤ پیدا ہوا تو مصر نے سعودی عرب، یو اے ای اور بحرین کا ساتھ دیتے ہوئے قطر سے اپنے سمبندھ وچھید کر لیے۔ یہ وشے مصر اور قطر کے بیچ ادھک تناؤ کا کارن بنا۔ جنوری 2021 میں جو بائیڈن کے وائٹ ہاؤس میں پہنچنے کے بعد مصر، سعودی عرب، یو اے ای اور بحرین نے قطر کے ساتھ کوٹنیتک سمبندھوں کو سامانیہ بنانے کے پریاس آرمبھ کر دیے۔ قطر کے نریش کی حالیہ مصر یاترا کو اسی پریپریکش میں دیکھا جا سکتا ہے۔ شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی یہ پہلی آدھیکارک مصر یاترا ہے۔ اس سے پہلے وہ سن 2015 میں عرب شکھر سمیلن میں بھاگ لینے کے ادیش سے مصر کے شرم الشیخ نگر گئے تھے۔ اس حساب سے قطر نریش کی دو دیوسی مصر یاترا کو 9 ورشوں کے بعد قطر کے کسی شاسک کی مصر کی آدھیکارک یاترا مانا جا رہا ہے۔ اس بار ان کو آدھیکارک روپ سے مصر کے راشٹرپتی کی اور سے آمنترت کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں دیشوں کے بیچ تناؤ کے بادل چھٹ رہے ہیں۔ راجنیتک ٹیکہ کاروں کا کہنا ہے کہ عبد الفتاح السیسی کے آدھیکارک نمنترن پر قطر کے شاسک شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی قاہرہ یاترا کا آرتھک مہتو ادھک ہے۔ 5 مہینوں پہلے آرمبھ ہوئے یوکرین یدھ کے بعد مصر کو کئی پرکار کی آرتھک سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مصر کی ورتمان آرتھک سمسیاؤں میں سب سے مہتوپورن سمسیا دیش میں کھادیہ پدارتھوں کا ابھاؤ ہے۔ ابھی حال ہی میں سعودی عرب کے یوراج محمد بن سلمان مصر آئے تھے۔ انہوں نے قاہرہ میں کئی آرتھک سمجھوتوں پر ہستاکشر کیے تھے۔ اس بات کی آشا کی جا رہی ہے کہ شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی مصر یاترا کے دوران اسی پرکار کے کچھ آرتھک سمجھوتے ہو سکتے ہیں۔ قطر نریش کی اس یاترا کو ان کی راجنیتک سفلتا کے روپ میں بھی دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ قطر پر کوٹنیتک دباؤ بنانے میں مصر کو سفلتا نہیں مل پائی، بلکہ اس نے ہار مانتے ہوئے قطر نریش کو اپنے یہاں آنے کا آدھیکارک نمنترن دیا اور ساتھ ہی اپنی آرتھک سمسیاؤں کو پیش کر کے اس نے انڈائریکٹ وے میں اپنا سندیش ان تک پہنچا دیا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش، کاریکرم راجنیتک چرچا۔
ترکی اور گریس کے سمبندھوں میں ایک بار پھر تناؤ چرم پر ہے اور ناٹو کے سدس دیشوں کے بیچ آروپ پرتیاروپ کا سلسلہ آرمبھ ہو گیا ہے۔ گریس کے رکشا منترالے نے ترکی پر اپنے دیش کی وایو سیما کے الگھن کا آروپ لگایا ہے۔ ان کا آروپ ہے کہ کیول شکروار کو ترکی کے F-16 یودھک ویمانوں اور ایک ڈرون ویمان نے 29 بار ان کے دیش کی وایو سیما کا الگھن کیا۔ سمیکھا پیش کریں ساتھی سید میسم عباس۔
ترکی اور گریس کے سمبندھوں میں ایک بار پھر تناؤ چرم پر ہے اور ناٹو کے سدسیہ دونوں دیشوں کے بیچ آروپ پرتیاروپ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ گریس کے رکشا منترالے نے ترکی پر اپنے دیش کی وایو سیما کے الگھن کا آروپ لگایا ہے۔ ان کا آروپ ہے کہ صرف شکروار کو ترکی کے F-16 لڑاکو ویمانوں اور ایک ڈرون ویمان نے 29 بار ان کے دیش کی وایو سیما کا الگھن کیا تھا۔ اس سے پہلے ترکی کے رکشا منترالے نے گریس کے لڑاکو ویمانوں پر 200 بار اپنے دیش کی وایو سیما کے الگھن کا آروپ لگایا تھا. دونوں دیشوں کے بیچ یہ آروپ پرتیاروپ ایسی استھتی میں لگائے جا رہے ہیں کہ جب پچھلے شکروار کو گریس کے پردھان منتری نے پترکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ترکی کو آکرمکتا اور گریس کی سمپربھوتا پر سوال اٹھانا بند کرنا چاہیے. اس سے پہلے ترک راشٹرپتی رجب طیب اردوغان نے کہا تھا کہ انکارا اب ایتھنز کے ساتھ وارتا کی میز پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ اب اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ایتھنز کا ایک ماتر ادیشیہ تناؤ اور ٹکراؤ کو بڑھانا ہے. ورتمان استھتی کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ دونوں ہی پڑوسی دیش ایک دوسرے کی سینیہ گتیویدھیوں پر پینی نظر رکھ رہے ہیں. دونوں کے بیچ دشکوں سے ٹکراؤ کی استھتی بنی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود انکارا اور ایتھنز کے ادھیکاریوں نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ ٹکراؤ سیدھے یدھ میں نہ بدل جائے. ترکی اور یونان کے بیچ سیما وواد کوئی نیا نہیں ہے, لیکن اس وواد میں سامراجیوادی شکتیوں اور وشیش کر برٹین کی بھومیکا کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. دوسرے وشو یدھ کے بعد وجیتا دیشوں خاص طور پر برٹین نے عثمانی سامراجیہ کو دسیوں دیشوں میں توڑ دیا, لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے باوجود آج بھی ترکی کے پاٹھیکرموں میں برٹین کو ایک رڑنیتک ساجیدار کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے. کل ملا کر کہا جا سکتا ہے کہ ترکی اور یونان اب تک سیدھے لڑائی سے بچتے رہے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ برٹین اور امریکہ جیسے دیش کھیتر میں سینیہ ٹکراؤ چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ دیش دونوں کے بیچ کے مدبھیدوں کو اتنا بھڑکا دیں کہ انہیں یدھ کی آگ میں دھکیل دیا جائے.
جموں کشمیر کے پورو مکھیہ منتری ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے لوگوں سے ایک جٹ ہو جانے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ ایک جٹ ہوئے بنا ہم ان ادھیکاروں کو پراپت نہیں کر سکتے جو ہم سے چھین لیے گئے ہیں.
جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے پرمکھ اور بھوتپورو مکھیہ منتری ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ایک بار پھر کشمیری لوگوں سے یہ آہوان کیا ہے کہ وہ ایک جٹ ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ نئی دہلی کے یہ پریاس ہیں کہ ہم الگ الگ ٹولیوں میں بٹ جائیں, پرنتو ہمیں ان کے ان شریندروں کو اسفل بنانا ہوگا. سری نگر میں آج ایک بار پھر انہوں نے ایک جن سبھا کو سمبوجت کرتے ہوئے لوگوں پر بل دیا کہ وہ آپسی مدبھید کو دور کریں اور ایک جٹ ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ جب تک ہم ایک جٹ نہیں ہو جائیں گے ہم وہ حقوق واپس نہیں لا سکتے ہیں جو ہم سے چھینے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ انکانسٹیٹیوشنلی جو حقوق 5 اگست 2019 کو ہم سے چھینے گئے ہیں, ہمیں یہ آشا ہے کہ انڈین سپریم کورٹ وہ ہمیں واپس کرے گا, لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ ڈیلیمیٹیشن کر کے جموں کشمیر کے ہت کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا گیا, پرنتو ہم ودھان سبھا چناؤ میں بھرپور بھاگ لیں گے اور ودھان سبھا میں اکثریت سے ان تمام پریاسوں کو اسفل بنائیں گے. ڈاکٹر فاروق نے کہا کہ آنے والے سمے میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ گپکار الائنس میں اور بھی دل شامل ہو جائیں تاکہ ایک جٹ اور ایک مت ہو کر اپنا ویکتوی نئی دہلی کے سامنے پیش کریں. اس بیچ جموں کشمیر میں امپلائیز نے اپنے مطالبوں کو لے کر سری نگر میں زوردار پردرشن کیے, جبکہ سری نگر کے ہی بیتری نگر میں لوگوں نے ایک پارٹی کے ورودھ میں بھی پردرشن کیے. سری نگر میں یو ایس ڈی سرکاری کرمچاریوں نے کہا ہے کہ ایک طرف جموں کشمیر ایل جی پرشاسن کا کہنا ہے کہ وہ تمام تر کاریہ جنتا کے ہت میں کر رہے ہیں, پرنتو جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری سیلریاں کافی دنوں سے پینڈنگ ہے. سپتے محمد حسن, ریڈیو تہران, سری نگر.
تو شوتا, سپتے محمد حسن کی اسی رپورٹ کے ساتھ یہ کاریہ یہیں پر سماپت ہوا.
دوستو, آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا, اور اب پرستت ہے قرآن ایشوری چمتکار.
Bye.
قرآن ایشوریہ چمتکار۔
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। आइए पहले सूरह ताहा की आयत क्रमांक 77 की तिलावत सुने।
وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔
और हमने मूसा की ओर अपना विशेष संदेश वही भेजा कि मेरे बंदों को रातों रात मिस्र से लेकर निकल पड़ो और उनके लिए समुद्र में सूखा मार्ग निकाल लो, शत्रु द्वारा पीछा किए जाने और समुद्र में डूबने की ओर से भय का आभास न करो।
इससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के जादूगरों के बीच शास्त्रार्थ के बाद जादूगरों के ईमान लाने की घटना का वर्णन किया गया। इन आयतों में बनी इसराइल के जीवन की एक अन्य घटना की ओर संकेत किया गया है। जब हजरत मूसा जादूगरों पर विजयी हो गए तो दिन प्रतिदिन उनके अनुयायियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। इसी कारण सदैव हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अनुयायियों और फिरौन के लोगों में झड़पें होती रहती थीं। यहां तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ईश्वर की ओर से आदेश दिया गया कि वे बनी इसराइल को, जो फिरौन के चंगुल में थे, सदा के लिए मिस्र से बाहर निकाल ले जाएं और उन्हें बैतुल मुकद्दस लौटा दें।
ये आयत ईश्वर के आदेश को इस प्रकार बयान करती है कि रात के समय नगर से बाहर निकलो ताकि शत्रु को इस बात का पता न चले, और फिर नील नदी पर अपनी लाठी को मारो तो ईश्वर के आदेश से उसके भीतर एक सूखा हुआ मार्ग खुल जाएगा जिस पर चलकर तुम सब सुरक्षित रूप से नदी को पार कर लो, न तो शत्रु से डरो और न ही नदी के पानी से भयभीत हो।
इस आयत से हमने सीखा कि अपने धर्म की रक्षा के लिए पलायन आवश्यक है, चाहे उसमें कठिनाइयां ही क्यों न हों।
अत्याचारियों के चंगुल से लोगों को मुक्त कराना पैगंबरों के महत्वपूर्ण दायित्वों में से एक है।
आइए अब सूरह ताहा की आयत क्रमांक 78 और 79 की तिलावत सुने।
فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى।
तो फिरौन ने अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया और नदी में उतर गया। सहसा ही नदी का पानी उन पर इस प्रकार छा गया जिस प्रकार उसे उन पर छा जाना चाहिए था, और फिरौन ने अपनी जाति को पदभ्रष्ट किया और उनका मार्गदर्शन न किया।
जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायियों के मिस्र से निकल जाने की सूचना फिरौन को मिली तो वो स्वयं एक बड़ी सेना के साथ उनका पीछा करने के लिए निकला, यहाँ तक कि वो अपनी सेना के साथ नील के तट तक पहुँच गया और उसकी सेना ने बनी इसराइल को घेर लिया। जब हजरत मूसा के अनुयायियों ने देखा कि उनके पीछे फिरौन अपनी सशक्त सेना के साथ और उनके सामने उफान मारती नील नदी है तो वे भय और निराशा में ग्रस्त हो गए।
उसी समय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को नील नदी के पानी पर मारा तो उसमें दरार सी पड़ गई और पानी उसके दोनों ओर ठहर गया। ईश्वर के चमत्कार से दरार पूर्ण रूप से सूख गई और उसमें मार्ग बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने अनुयायियों के साथ उस मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। जब वे नदी के बीच में पहुंचे तो उनका पीछा कर रही फिरौन की सेना भी उस मार्ग पर आगे बढ़ने लगी। जब हजरत मूसा और उनके सभी अनुयायी नदी से बाहर निकल गए तो पानी फिर से मिल गया और फिरौन तथा उसके सभी सिपाही पानी में डूब गए। ठहरा हुआ पानी एक बहुत बड़ी लहर में परिवर्तित हो गया था और उसने फिरौन की सेना के घोड़ों तथा उनके हथियारों तक को डुबो दिया।
آگے چل کر آیت کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ چمتکار دیکھ کر فرعون نہ تو سوئم ایمان لایا اور نہ ہی اس کے لیے اس نے لوگوں کا مارگ درشن کیا، بلکہ اپنے دویش اور ہٹ دھرم کے کارن وہ لوگوں کی پد بھرشٹتا کا کارن بنا۔ فرعون نے جو سوئم کو مصر کے لوگوں کا ایشور کہتا تھا، انہیں موکش و کلیان تک پہنچانے کے بجائے پد بھرشٹ کر دیا، یہاں تک کہ وہ سوئم بھی اور اس کے لوگ بھی ڈوب گئے۔
ان آیتوں سے ہم نے سیکھا کہ پانی اور سمندر ایشور کے آگیا پالک ہیں، اس کے آدیش پر کبھی وہ پریم کا ویوہار کرتے ہیں تو کبھی کرودھ کا۔
لوگوں کے مارگ درشن یا پد بھرشٹتا میں سماج کے نیتاؤں اور شاسکوں کی مول بھومکا ہے۔
آئیے اب سورہ طہ کی آیت کرمانک 80 کی تلاوت سنیں۔
يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى۔
ہے بنی اسرائیل، نشچے ہی ہم نے تمہیں تمہارے شترو سے مکتی دلائی اور تم سے تور کے داہنے چھور کا وعدہ کیا اور تم پر منو اور سلوا جیسے بھوجن اتارے۔
یہ آیت بنی اسرائیل پر ایشور کی مہان انوکمپاؤں کی اور سنکیت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ فرعون کے چنگل سے مکتی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نیترتو میں اور ایشور کے چمتکار کے کارن ملی، اس جاتی کے لیے ایشور کا پہلا اپہار تھی۔ تور نامک پروت کو حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کے لیے نردھارت کیا گیا تھا اور وہ ایشوریہ کتاب توریت کی پراپتی کا استھان تھا۔ اسی استھان پر انہیں ایشوریہ مارگ درشن پراپت ہوا اور انہوں نے ایشوریہ شکتی کے پرتیبمبن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
البتہ سوتندرتا و مارگ درشن کی وبھوتی کے ساتھ ہی ایشور نے بنی اسرائیل کو بھوتک وبھوتیاں بھی پردان کی تھیں۔ جب یہ جاتی مرستھل میں بھٹک رہی تھی جہاں اسے اچت آہار پراپت نہیں ہو رہا تھا، تو ایشور نے نکٹورتی پروت سے اسے مدھو اپلبدھ کرایا اور چھوٹے چھوٹے پکشیوں کو جن کا ماس اتینت سوادشت تھا ان کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان کے ماس کو بھوجن کے روپ میں پریوگ کریں۔
اس آیت سے ہم نے سیکھا کہ سوادھینتا و سوتنترتا ان مہان انوکمپاؤں میں سے ہیں جنہیں سدیو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے مولیہ کو سمجھنا چاہیے۔
پیغمبروں کا دائتو ہے کہ وہ لوگوں کا مارگ درشن کریں، کنتو سب سے پہلے اتیاچاری شاسکوں کے چنگل سے ان کی سوتنترتا کا مارگ پرشست ہونا چاہیے۔
ایشور آدھیاتمک انوکمپاؤں کی اور بھی سنکیت کرتا ہے اور بھوتک انوکمپاؤں کی اور بھی، کنتو آدھیاتمک معاملوں کو پراتھمکتا پراپت ہے۔
دوستوں آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا۔ ابھی آپ نے کارکرم سنا قرآن ایشوری چمتکار۔ اب آپ کی سیوا میں انتراشٹری مادک پدارتھ نشیدھ دیوس پر پیش ہے وشیش کارکرم۔
दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और रवीश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों नशीली चीज़ों और पदार्थों के निवारण के लिए प्रतिवर्ष 26 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने एक प्रस्ताव में इस दिन को मनाए जाने का निर्णय लिया था। 26 जून 1989 से ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को नशे की बुरी आदत से छुटकारा दिलाना और उन्हें नशे से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाना है। 26 जून 1987 को वियना में आयोजित नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। इस सम्मेलन में सिफारिश की गई थी कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ लड़ाई के महत्व को चिन्हित करने के लिए एक वार्षिक दिवस मनाया जाना चाहिए।
नशा शरीर को दिमाग की तरह खोखला ही नहीं करता बल्कि पारिवारिक और सामाजिक जीवन को तहस नहस कर देता है, वहीं आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देता है। नशा एक धीमा जहर है जो नशा करने वालों की जान किस्तों में लेता है। आज दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो मादक पदार्थों और नशे की समस्या से नहीं जूझ रहा हो। हर साल एक बड़ा बजट मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने और नशे की समस्या से निपटने के लिए खर्च किया जाता है। इसके बावजूद दुनिया भर में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों और उसका सेवन करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। दुनिया भर के देशों में नशा करने वालों की मृत्यु दर भी बढ़ती ही जा रही है। तमाम दावों के बावजूद नशे की बढ़ती रफ्तार नहीं रुक रही है। प्रतिवर्ष लाखों लोग दुनिया में नशे के कारण अकाल मौत मर रहे हैं। पूरी दुनिया के देशों में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, नशे के दुष्परिणामों के बारे में विशेषज्ञों द्वारा लोगों को सलाह दी जाती है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ कमी रह जाती है जिसके कारण मादक पदार्थों और नशीली दवाओं की तस्करी में वृद्धि हो रही है।
दोस्तों, नशीले पदार्थों का उत्पादन, तस्करी और सेवन विश्व की गंभीर प्रमुख समस्याओं में से एक है। इसके उत्पादन, तस्करी और सेवन में निरंतर वृद्धि हो रही है। नई पीढ़ी इस जाल में पूरी तरह कैद होती जा रही है। कुछ ऐसे देश हैं जहां हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी नशे का आदि हो चुका है। नशीले पदार्थों के छोटे छोटे पाउचों से लेकर तेज मादक पदार्थों और औषधियों तक की सहज उपलब्धता इस आदत को बढ़ाने का प्रमुख कारण है। इस दीवानगी को प्रचार माध्यमों ने अधिक बढ़ावा दिया है और लोगों को भटकाया है। महिलाओं और युवाओं में नशे की लत बढ़ती जा रही है। पिछले दो दशकों के दौरान नशा करने वाली महिलाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। विशेषकर उच्च तथा उच्च मध्य वर्ग की महिलाओं में ये एक फैशन के रूप में आरंभ होता है और फिर धीरे धीरे आदत में शुमार होता चला जाता है।
नशे के एक नए नए तरीके इजाद हो रहे हैं और लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे अनेक तरीके हैं जो शराब और तंबाकू से भी ज्यादा हानिकारक हैं। चिकित्सकीय आधार पर देखें तो अफीम, हीरोइन, चरस, कोकीन और स्मैक जैसे मादक पदार्थों से व्यक्ति वास्तव में अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और पागल हो जाता है। ये ऐसे उत्तेजना लाने वाले पदार्थ हैं जिनकी लत के प्रभाव में व्यक्ति अपराध तक कर बैठता है और यहाँ तक कि वो अपनी या किसी दूसरे की जान तक ले लेता है। ये समस्या सिर्फ स्वास्थ्य से नहीं बल्कि अपराध से भी जुड़ी हुई है। नशे के सेवन से ये अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है या अपराध की अंधी गलियों में धंसता चला जाता है। अगर मादक पदार्थों के प्रति लोगों के रुझान के कारणों की समीक्षा नहीं होगी तो शारीरिक और मानसिक उपचार का कोई खास लाभ नहीं होगा। नशे को जड़ से उखाड़ फेंकना संभव नहीं है, लेकिन सही योजना और प्रबंधन द्वारा उस पर काबू पाया जा सकता है और लोगों में जागरूकता फैलाकर उन्हें नशे की लत से दूर रखा जा सकता है। ईरान की इस्लामी क्रांति के संस्थापक इमाम खुमैनी का कहना है कि किसी नशा करने वालों को नशा मुक्त करना किसी एक व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करना नहीं बल्कि समाज को मुक्ति प्रदान करना है।
दोस्तों, मादक पदार्थों और नशे के परिणामों पर नज़र डालेंगे तो देखेंगे कि नशा समाज, व्यक्ति और परिवार को आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो नशा करने वालों में फैसला लेने की योग्यता नहीं रहती है, इच्छा शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है, जिम्मेदारी उठाने की योग्यता खत्म हो जाती है, भावनात्मक कमजोरी पैदा हो जाती है, घबराहट, मानसिक असंतुलन, अस्थिर व्यक्तित्व और आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। सामाजिक परिणामों में समाज के नियमों की अवहेलना, श्रम शक्ति का कमजोर पड़ जाना, समाज में अव्यवस्था और अविश्वास का फैलना, पारिवारिक नींव को कमजोर करना और चोरी, वैश्यावृत्ति और भीख मांगने जैसे अपराधों में बढ़ने की ओर संकेत किया जा सकता है। मादक पदार्थों की लत के कुछ आर्थिक परिणामों में बेरोजगारी, नशीली दवाओं और मादक पदार्थों की खरीद और उपयोग के बदले में वित्तीय नुकसान समाज और परिवार की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देता है। इसीलिए ये लत जीवन के सभी पहलुओं के विनाश का कारण बन सकती है। राजनीतिक तौर पर अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो ये सामने बात आती है कि समाज के विनाश और नैतिक पतन में मादक पदार्थों और नशीली दवाओं की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। मादक पदार्थों की समस्या केवल एक या कुछ देशों तक सीमित नहीं है, ये समस्या भौगोलिक सीमाओं को पार कर चुकी है और संगठित अपराध के स्तर पर एक वैश्विक समस्या बन चुकी है।
नशे के व्यापारियों और मादक पदार्थों के तस्करों का पहला लक्ष्य युवा होते हैं, जो समाज के भविष्य के विकास के लिए एक उत्पादक शक्ति होते हैं। इस सामाजिक क्षति के परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, खेल और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रभावित होते हैं और आर्थिक चुनौतियों के साथ पिछड़ापन और गरीबी फैलती है। अतः देश की स्वतंत्रता और सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। इस बीच मध्य पूर्व का क्षेत्र नशीले पदार्थों की तस्करी और विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय कारणों से सबसे अधिक जोखिम में है। इसलिए इस क्षेत्र के देशों को इस लानत पर काबू पाने के लिए निरंतर प्रयासों और उपायों की जरूरत है, क्योंकि इस क्षेत्र में किसी भी तरह की लापरवाही से नशे की लत किसी महामारी की तरह फैल जाएगी।
दोस्तों, ड्रग्स एंड क्राइम के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC के अनुसार 2020 में लगभग 275 मिलियन लोगों ने मादक पदार्थों का सेवन किया था और 36 मिलियन से अधिक लोग नशीली दवाओं के इस्तेमाल से होने वाली समस्याओं से पीड़ित हुए। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में 11 मिलियन से अधिक लोग नशे का इंजेक्शन लेते हैं, जिनमें से आधे हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हैं। ओपियाइड या अफयूनी समस्याओं के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले दो ओपियाइड, मेथाडोन और ब्यूप्रेनोफेरिन, पिछले दो दशकों में अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हो गए हैं। चिकित्सा उपयोग के लिए इन पदार्थों की उपलब्धता 1999 के बाद से 6 गुना बढ़ गई है, जो 557 मिलियन दैनिक खुराक से 2019 तक 3317 मिलियन हो गई है। इससे स्पष्ट होता है कि पहले से कहीं अधिक साक्ष्य आधारित दवा उपचार के लिए उपलब्ध है।
आंकड़े दर्शाते हैं कि यूरोपीय और उत्तरी अमरीकी देश अफगानिस्तान में उत्पादित मादक पदार्थ की सबसे बड़ी मंडी है। अफगानिस्तान के अफीम की खेप पड़ोसी और क्षेत्रीय देशों से होकर गुजरती है। इस्लामी गणतंत्र ईरान दुनिया में मादक पदार्थों की तस्करी से मुकाबले में अग्रिम पंक्ति में रहा है और इस मार्ग में अब तक उसने 2800 से ज्यादा शहीदों और इससे कहीं ज्यादा घायलों की कुर्बानी दी है। आंकड़े दर्शाते हैं कि अफगानिस्तान पर अमेरिका के हमले और कब्जे के दौरान इस देश में मादक पदार्थों के उत्पादन और तस्करी में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई थी। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है, उसी तरह मादक पदार्थ से मुकाबले के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। इस संयुक्त सहयोग का तकाजा है कि सभी देश, खासतौर पर उन देशों के बीच समन्वय व सहयोग होना चाहिए जो सीधे तौर पर इस बुराई के निशाने पर हैं, ताकि समन्वय व सहयोग से मादक पदार्थों की तस्करी के स्रोत पर नियंत्रण किया जा सके।
मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में ईरान अग्रिम मोर्चे पर है और इस संबंध में उसने व्यापक कार्रवाइयां की हैं। इस लड़ाई में ईरान की भूमिका का महत्व इतना अधिक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने ईरान को मादक पदार्थों से मुकाबला करने वाले अगुआ देश की संज्ञा दी है। मादक पदार्थों से मुकाबला काफी खर्चीला है, लेकिन इसके मुकाबले का लाभ सभी देशों को पहुंचता है। मादक पदार्थों की तस्करी से मुकाबले में ईरान की कुर्बानी से जिन देशों को लाभ पहुंच रहा है, उनका दायित्व है कि वे ईरान को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता दें, लेकिन इस दिशा में वे कुछ नहीं कर रहे हैं। स्पष्ट है कि मादक पदार्थों से तस्करी से मुकाबले में हर प्रकार की कमी के लिए समस्त देश जिम्मेदार होंगे, और ईरान का मानना है कि जिस तरह आतंकवाद से मुकाबला ज़रूरी है, उसी तरह मादक पदार्थों की तस्करी से भी मुकाबला ज़रूरी है।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति रईसी का कहना है कि प्रतिबंधों को हटाने की वार्ता वाली मेज को तेहरान नहीं छोड़ेगा। इराक में अमरीका और संयुक्त अरब इमारात के हितों पर हमले हुए हैं। गुजरात हिंसा में नरेंद्र मोदी की भूमिका की जांच कराने की मांग करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गई है, और महाराष्ट्र में हालात खराब हो गए और बागी विधायकों को वाई प्लस सुरक्षा दी गई है। तो इसी के साथ हमारा ये समाचार समाप्त होता है। तो अनुमति दें, खुदा हाफिज। Oh,